Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Vishwatmanandji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Hari यदियं कारुण्यं पतति गत पुण्येऽपि मनुजे तथा वाणी बिन्दु पिबति भवसिन्धुं घटजनी स्मरामि प्रातस्तम् समविषमभेदैकदलनम् अखण्डानन्दम् श्री गुरुवरमहम् ब्रह्म परमम् नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जय मुदीरे शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः हरिः ॐ नारायण 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 कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली में आज प्रवेश कर रहे हैं। श्लोक तो मंत्र तो बहुत हैं इसमें, लेकिन आज सिर्फ दो मंत्र हम इसके लेते हैं, एक दसवां और एक चौदहवां। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टेति तामाहु परमांगतिम्। बात तो बहुत ऊंची हो जाती है और समझ में भी आती है, लेकिन धारणा निष्ठा इसमें जरा दिक्कत है। तो इसके लिए कोई न कोई साधन जीवन में जब तक नहीं होता है तब तक वो निष्ठा बनती नहीं है। साधन साध्य के अनुरूप होना चाहिए। साधन हम कुछ भी करें और निष्ठा चाहें जिसकी प्राप्त हो जाए, ऐसा संभव नहीं होता है। जहां आप पहुंचना चाहते हो उसी के अनुरूप आपको साधन पकड़ना पड़ेगा। तो ये दसवें मंत्र में यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि पहले तो नवे मंत्र में ये बात कही उन्होंने कि इस आत्मा का जो ज्ञान होता है वो हृदय मनीषा मनसाभिकृप्तो ययेतद् विदु अमृतास्ते भवन्ति। एक तो ये बुद्धि का ही विषय है। बुद्धि माने दंड कसरत से मतलब नहीं है, कि बुद्धि का व्यायाम कर लिया जाए। बुद्धि का मतलब है, बुद्धि के कई स्तर होते हैं। एक स्तर तो बुद्धि का होता है जो मन और इंद्रियों से मिला रहता है, दूसरा स्तर बीच में समझ लो, और तीसरा स्तर उसका आत्मा से मिला रहता है। तो वो तीसरा स्तर जो है वो अनकेयर्ड फॉर रहता है, लोग प्रायः उसकी परवाह नहीं करते। जो सबसे निचले स्तर है, जो मन और इंद्रियों से मिला हुआ है, उसी को लोग बुद्धि समझते हैं। ये सबसे निचली बुद्धि का लक्षण है कि इंद्रिय और मन जैसा बोले उसको हां में हां मिला देना। ये बुद्धि की जो कमजोरी है, ये बुद्धि का सबसे निचला स्तर है। इंद्रियों को ये अच्छा लगता है, मन को ये अच्छा लगता है, तो इंद्रियां सूचना देती हैं मन को और मन सूचना देता है बुद्धि को और बुद्धि उसे डिटो कर देती है। तो बस मन और इंद्रियों में शक्ति आ जाती है कर्म करने की। अब वो चाहे धर्म की वृत्ति हो चाहे अधर्म की वृत्ति हो, अधर्म की वृत्ति का फल दुख होता है। अभी मिल जाए, थोड़े दिन पीछे मिले, अगले जीवन में मिले, और धर्म का फल सुख होता है। धर्म करते करते ही सुख होता है। और अगर विशेष फल की इच्छा हो तो कालांतर में उसका सुख मिलता है, जन्मांतर में भी सुख मिलता है। तो ये बुद्धि का जो डिट्टो करना है ना, जैसा मन और इंद्रियों ने बोला वैसा ही हां में हां मिला दी, ये बुद्धि का सबसे निचला स्तर है। बीच का स्तर वो है कि जो अध्यात्म की एक विशेष दुनिया में रमण करता है, उसे सत्य से कोई मतलब नहीं है। सत्य परम सत्य क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। उसे तो ये मतलब है कि परंपरा से हमें क्या प्राप्त है। अब किसी की योग में प्रवृत्ति हो गई, किसी की भक्ति में प्रवृत्ति हो गई, किसी के धर्म में प्रवृत्ति हो गई। अब जिसमें भी प्रवृत्ति हो गई है तो सभी सत्कर्म, लेकिन जिसमें भी प्रवृत्ति हो गई बस उसी में रमण करने लगती है बुद्धि। उसको तो यश बोलती है और बाकी को नो बोलती है। ये बुद्धि की मध्यम अवस्था है। और बुद्धि की अवस्था जो उत्तम अवस्था है वो है जो आत्मा से मिली रहती है। ये स्वाभाविक ही मिली रहती है, क्योंकि बुद्धि में जो बुद्ध है ना, ये ज्ञान का वाचक है, और इकार जो है ये शक्ति है। सत्वगुण में शक्ति होती है और आत्मा में शक्ति नहीं होती है। आत्मा शक्ति वाला नहीं है, आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। जैसे सूर्य प्रकाश स्वरूप है, प्रकाश वाला सूर्य ऐसा नहीं। प्रकाश वाली तो बहुत सी चीजें हैं, तो सबको सूर्य थोड़ी बोलेंगे। तो जो प्रकाश है, प्रकाश का जो केंद्र है, जिसमें प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, उसी को सूर्य बोलते हैं। तो ये बुद्धि जो है, इसमें आत्मा का भी बीज रहता है जो उत्तम बुद्धि है, और शक्ति के कारण इसका निचली तरफ भी झुकाव रहता है। अब किसी तरह से यदि वो निचली तरफ का झुकाव समाप्त हो जाए तो वो आत्माकार वृत्ति हो जाती है, और आत्माकार वृत्ति होने पर फिर वो ब्रह्माकार वृत्ति भी हो जाती है, और ब्रह्माकार वृत्ति होने पर अविद्या भी निवृत्त हो जाती है, और अविद्या निवृत्त होने पर मोक्ष हो जाता है। यही वेदांत का सिद्धांत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं वेदांत में सुन करके पढ़ करके वो कहते हैं ब्रह्माकार वृत्ति की कोई जरूरत नहीं है। ब्रह्म की तो कोई वृत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्म तो मन वाणी का विषय ही नहीं है, तो उसकी वृत्ति क्या बनेगी, ऐसा बोल देते हैं लोग। लेकिन ये सर्वशास्त्र विरुद्ध है नारायण जी। ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, लेकिन ये कोई ब्रह्म ऐसा विषय की तरह से तो है नहीं कि पुस्तक की तरह से उसको भीतर घुसिया हुए ब्रह्म और उसकी वृत्ति बने आवे। बाहर से कोई वस्तु हो ब्रह्म और उसकी वृत्ति भीतर बन जाए, जैसे कि सब विषयों की बनती है, ऐसे ब्रह्माकार वृत्ति नहीं बनती है। तो कैसे बनती है कि जो शास्त्र में ब्रह्म का लक्षण है, उस लक्षण को वृत्ति बुद्धि से जब विचार करते हैं तो विचार करते 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 बुद्धि तद्रूप हो जाती है। अब वो ऐसी तद्रूप हो जाए कि उसमें कर्तापन और भोक्तापन का तो उल्लेख हो नहीं, मैं ब्रह्माकार वृत्ति कर रहा हूं, इसको करने से मुझे मोक्ष प्राप्त होगी, यद्यपि ये बैकग्राउंड में तो रहता है, क्योंकि कोई भी कर्म भोक्तृत्व रहित नहीं होता है। लेकिन शंकराचार्य भगवान ने कहा कि भोक्तृत्वम नाम उपलब्धृत्वम, जैसी जिसकी प्रकृति है उसी के अनुसार भोग होगा। अब आंख का भोग सिवाय रूप दर्शन के और क्या होगा, कान का भोग सिवाय शब्द सुनने के और क्या होगा, मन का भोग इन पांचों विषयों के अलावा और क्या होगा, बुद्धि का भोग संकल्प विकल्प के मध्य में निश्चय करने के अलावा और क्या होगा, आत्मा का भोग क्या होगा, तो आत्मा का भोग होगा इन सबको जैसा का तैसा जानना, उपलब्ध करना, यही आत्मा का भोग है नारायण। कोई भोग वृत्ति उसमें नहीं होती है, भोग का अभिमान भी नहीं होता है। जहां भोग का अभिमान होगा वहां सुख दुख की उत्पत्ति होगी। ब्रह्माकार वृत्ति में सुख दुख नहीं है, ब्रह्माकार वृत्ति में सिर्फ अविद्या निवृत्ति का सामर्थ्य है। तो क्या निर्णय हुआ कि शास्त्र से जैसी ब्रह्म की भावना स्वरूप बताया गया है शास्त्र में, उस भावना के अनुरूप, उस स्वरूप के अनुरूप अपनी वृत्ति को ढालना, और वो जब वृत्ति ढल जाती है तो उसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। लेकिन उसमें कर्तापन और भोक्तापन का उल्लेख बुद्धि में नहीं होता है। अगर कर्तापन का उल्लेख हो गया या भोक्तापन का उल्लेख हो गया तो मैंने ये ब्रह्माकार वृत्ति उत्पन्न की और इसने अविद्या निवृत्त की, ये कर्तृत्व शेष रह जाएगा, इसलिए ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। तो ये महाराजा श्री के ही शब्द हैं, वाक्य हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व उल्लेख शून्य, सच्चिदानंद घन, घन माने अद्वितीय, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न बोलते थे, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न, अपने चैतन्य से तो हो अभिन्न, सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य रहित, और सच्चित आनंद रूप जो अद्वितीय ब्रह्म मैं हूं, ऐसी स्फुरणा हो और इसमें कर्तापन न हो, इसी को ब्रह्माकार वृत्ति बोलते हैं। तो इसमें वैराग्य की आवश्यकता होती है। अगर वैराग्य नहीं है तो कर्तापन भोक्तापन का उल्लेख जरूर हो जाएगा। अब वैसे एक ये भी बात है कि वो किसी ने किसी को अनुष्ठान बताया तो बोले महाराज इसमें कुछ परहेज, बोले हाँ परहेज ये है कि जब अनुष्ठान करो तो बंदर की याद ना आवे। बोले अच्छा, बोले ठीक है, हम बंदर की याद क्यों करेंगे, अब जब अनुष्ठान उसने प्रारंभ किया तो मन में ये आवे कि कहीं बंदर की याद ना आ जाए, तो कहीं बंदर की याद ना आ जाए, तो बंदर तो याद आ ही रहा है ना रहा। तो जब ये सुनते हैं ना कि बिना वैराग्य के नहीं होता है, वैराग्य चाहिए इसमें, तो एकदम सब हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, बोले हम में तो ये वैराग्य है ही नहीं। अरे है ही नहीं की बात नहीं है, वैराग्य तो सब में होता है, बिना राग और वैराग्य ये दोनों साथ साथ चलते हैं। एक ही वस्तु को आप हमेशा के लिए नहीं पकड़ सकते हो, वैराग्य सामान्य वैराग्य तो सबको होता है। अब ये विशेष वैराग्य की स्थिति जो है, ये तो भाई जिसको जो चीज चाहिए, अब जब परीक्षा देते हैं नारायण, कोई सी छोटी से छोटी है बड़ी से बड़ी, तो रात दिन एक कर देते हैं, न नींद आती है न भूख लगती है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ऐसे ही जो ये वैज्ञानिक होते हैं, ये जब अनुसंधान करते हैं न्यूटन के बारे में, सॉरी आइंस्टीन के बारे में, ये प्रसिद्धि थी कि वो उसने दोस्त को खाने पर बुलाया और वो खुद आया ही नहीं, और नौकर से कह गया कि भाई अगर वो मेरे दोस्त आवे तो उनको भोजन करा देना, और वो भोजन करके चला गया। वो शाम को लौटे वो अपने ऑफिस में से, तो डाइनिंग टेबल पर देखा तो सब सामान साफ था वहां, तो बोले अगर ये डाइनिंग टेबल साफ है तो इसका अर्थ है कि मैंने भोजन कर लिया है। अगर कुछ सामान बचता तो मैं सोचता कि अभी मैंने भोजन नहीं किया है। अब वो दोस्त खा के चला गया, उसने नौकर ने सफाई कर दी, तो बोले यहां कुछ सामान नहीं है इसका अर्थ है मैंने भोजन कर लिया। इतना महब हो जाता है आदमी। तो जिसको जो चीज चाहिए उसके लिए विशेष वैराग्य की स्थिति अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है, इसमें बंदर को याद ना आ जाए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति में वैराग्य की का बीज होता ही है, और सबसे ज्यादा वैराग्य तो माताओं को होता है नारायण। राग भी सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है और वैराग्य भी सबसे ज्यादा उन्हीं को होता है। देखो अपने मायके का घर छोड़कर चले आते हैं, वैराग्य है कि नहीं है, और फिर पत्नी वो पति और बच्चों के लिए कुछ भी छोड़ने को तैयार होती हैं, हो जाती हैं, ना अपना सुख चाहिए ना अपना धन चाहिए, सब उनके ऊपर निछावर कर देती हैं। तो वैराग्य ना हो तो कैसे हो, तो सामान्य वैराग्य तो सब में है, लेकिन जहां सुख है हमको वो भी नहीं चाहिए। दुख से तो वैराग्य सबको होता है, लेकिन सुख से जो वैराग्य होना है उसी को वैराग्य बोलते हैं। सब सुख रहते हुए फिर उसमें भी आप अपने को तटस्थ रखें, यही वैराग्य की निशानी है। सुख सब है, पैसा भी है, परिवार भी है, लोक में सामान्य प्रतिष्ठा भी है नारायण। संभावित चाकीर्तिर मरणात अतिरिच्यते, तो गृहस्थ के लिए तो ये लोकेष्णा भी बहुत आवश्यक है। जिसकी प्रतिष्ठा नहीं है अपने समाज में, उसका तो जीना मरने ही के समान है। लेकिन लोकेष्णा होना अलग बात है और प्रतिष्ठा होना अलग बात है। प्रतिष्ठा तो सत्कर्म से होती है, तो वैराग्य अपेक्षित है इस ब्रह्माकार वृत्ति में, और वो जैसे जैसे साधना बढ़ती है तैसी तैसी अपने आप वैराग्य भी बढ़ता जाता है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन जिन लोगों को ऐसी स्थिति भी प्राप्त न हो तो वो क्या करें, उनके लिए योग का साधन बताते हैं। ये योगा नहीं योग, अब योग तो खत्म ही हो गया, योगा ही रह गया नारायण। तो योग का साधन क्या है, पातंजल योग दर्शन का जो योग है उसी को योग बोलते हैं। उसमें आसन के बारे में सिर्फ एक सूत्र है, स्थिर सुखमासनम, जिसमें आपका सुख स्थिर हो उस पोज में बैठना ये आसन कहलाता है। तो लेकिन एक सूत्र को इतना विस्तार हो गया कि अब सारा योग जो है वो आसनों में ही सीमित हो गया है, ये आसन और ये आसन और ये आसन। महाराज जी तो कहते थे, हंसी में ही कहते थे, खैर वो कहते थे मनुष्य 84 लाख योनियों में से होके आया है ना, तो सबकी स्मृति रहती है। बोले मयूर आसन है, उष्ट्र आसन है, मत्स्य आसन है, और पता नहीं एक और भी आसन का नाम लेते थे, गर्दभासन। हमने तो नाम नहीं सुना गर्दभासन का, लेकिन वो हंसाने के लिए कहते होंगे। तो जैसे पशु लोग आसन करते हैं ऐसे ही मनुष्य जो है बस इसी को योग समझता। मैं तो साहब योगा करता हूं। तो योगा करते हो, योग नहीं करते हो। हमारे जगत गुरु जी पुरी के शंकराचार्य जो हैं, स्वामी निश्चलानंद जी महाराज, वो कहते हैं कि आज जो है त्याग वैराग्य रहित नहीं है। हाँ, त्याग वैराग्य रहित तो ज्ञान रह गया है। बोले ज्ञान बताओ, त्याग वैराग्य की चर्चा मत करो, ये बताओ कि हम आत्मा हैं, हम ब्रह्म हैं, ये ठीक है, लेकिन त्याग वैराग्य की चर्चा मत करो। त्याग वैराग्य रहित ज्ञान और भोग सहित भक्ति, सामान्य भक्ति, आप बैठ के माला जपो इसको तो लोग भक्ति नहीं मानते हैं। बोले जब तक नाचो नहीं तब तक भक्ति नहीं है। तो अब ये अंग्रेज लोग आए हैं ना जब से, इस्कॉन वाले, तो इनके शरीर में रजोगुण भगवान की कृपा से ज्यादा रहता है, तो इसलिए उनकी कोई भी भजन कीर्तन जितना भी है वो सब बिना नृत्य के होता ही नहीं है। हाथ भी चलेंगे, पैर भी चलेंगे, सिर भी चलेगा। रस आना अलग बात है और भगवान की भक्ति होना अलग बात है। तो ये योग जो है ये अंतरंग साधन है, वेदांत का अंतरंग साधन योग है। अंतरंग क्यों है कि इसमें बुद्धि जो है वो आत्मा के नजदीक आ जाती है। योगश्चित्त वृत्ति निरोध, जब चित्त वृत्तियों का निरोध होगा तब वो चित्त जो है वो आत्माकार तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम। जब चित्त का निरोध हो जाता है तो उस समय दृष्टा जो है अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो जिसको वेदांती लोग त्वम पदार्थ बोलते हैं, कम से कम उतना हिस्सा तो पातंजल योग दर्शन से सिद्ध हो ही जाता है। तो त्वम पदार्थ में भी अगर स्थिति हो जाए तो 75% वेदांत सिद्ध हो जाता है। त्वम पदार्थ माने ये इसी शरीर में जो आत्मा है, और जो सर्वव्यापक आत्मा है उसको ब्रह्म बोलते हैं। तो उतनी बात रह जाएगी, लेकिन बुद्धि एक दफे यहां तो बैठे कम से कम। इसलिए योग को अंतरंग साधन बोलते हैं। जो लोग साधन की उपेक्षा करते हैं वो जबानी जमा खर्च का वेदांत रह जाता है उनका। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, तो ये पातंजल योग दर्शन में क्रिया योग के नाम से बोला गया है। क्रिया योग माने धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीन को मिलाकर के क्रिया योग बोलते हैं। ये कुछ करने का नाम क्रिया योग नहीं है। धारणा, मन की धारणा, और ध्यान, मन का एक जगह टिक जाना और फिर उसी में तद्रूप हो जाना, चित्त की वृत्तियों का रुक जाना। तो कहते हैं यहां वेदांत में क्या होगा ये क्रिया योग समाधि क्या होगी। तो यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि, पंच ज्ञानानि यदा अवतिष्ठन्ते, पांचों ज्ञानेन्द्रियां जब अपने स्वरूप में बैठ जाती हैं, मनसा सह मन के सहित, और बुद्धिश्च न विचेष्टति और बुद्धि भी चेष्टा नहीं करती है, ताम आहु परमांगतिम, उसको ही परम गति बोलते हैं। तो अगर मैं समझता हूं 10 मिनट में तो खैर कोई बात नहीं बनती है, आप आधा घंटे बैठोगे तो आधा घंटे में तब जाकर 3-4 मिनट की स्थिति आपकी बनेगी, नहीं तो बाकी टाइम मान लो 5 मिनट की भी, मैं समझता हूं 5 मिनट की बनती नहीं है, लेकिन आधा घंटा आप बैठें जरूर। और बैठने में क्या करें कि ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय हैं पहले उनको छोड़ दें, आंख बंद कर लो, रूप चला गया, कान में चाहो तो ठेपी लगा लो तो शब्द जो है आपको कम आएंगे, कम से कम ध्यान के कक्ष में ये टीवी और टेप रिकॉर्डर और ये सब आजकल के जो बवाल है ना, इनको सब हटा दो वहां से। ध्यान का कक्ष जो है वो शांत रहना चाहिए, नहीं तो ठेपी लगा लो, नारायण रखे भी रहे तो क्या है। तो कान भी गए, आंख भी गया, नाक में कुछ मत लगाना नहीं तो राम राम सत्य हो जाएगी। अच्छा मुंह बंद है ही, जीभ के ऊपर कोई मिश्री विश्री कुछ रखने की जरूरत नहीं है, बोले सूख जाएगी कि सूख जाने दो। और रह गई त्वचा, तो त्वचा में जो है कम्बल ओढ़ लो अगर एसी है तो, और नहीं तो कोई चादर ओढ़ लो मच्छर मक्खी जिससे आपको तंग ना करें। तो ये पांचों ज्ञानेन्द्रियों के विषयों को आप बाहर से आना बंद कर दो। जब बाहर से आना बंद हो जाएंगे तो ये भीतर का मन जो है ये उनमें लगेगा, क्योंकि मन में तो संस्कार सब इंद्रियों ही के द्वारा गए हुए हैं। तब फिर वहां पर आप भाव कीजिए कि या तो ये भाव कीजिए कि सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है, या तो ये भाव कीजिए कि मैं ब्रह्म हूं। भाव, कोई वृत्ति बनानी नहीं है, भाव भी एक वृत्ति ही है, लेकिन सामान्य वृत्ति जो होती है वो तो भाव कहलाता है, और विशेष वृत्ति जैसे मैं ब्रह्म हूं ये तो वृत्ति है, और सब ब्रह्म है इसमें आपकी सब वृत्तियां शांत होने लगेंगे। ये सिद्धांत तो है ही ना कि सब परमात्मा है, तो इसको मानने में क्या आपत्ति है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मानी के जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, तो वेदांत से तो सुनो कि सब सीताराम मैं है, सकल राम मय जाने, तो सब राम मय। तो अब आपका मन जो है वो उछल कूद बंद कर देगा, सब ब्रह्म है ये ऐसा कोड़ा है मन के लिए, सब परमात्मा है, सब हमारे इष्ट देव ही हैं, ये ऐसा कोड़ा है कि इसमें मन जो है वो शांत अपने आप होने लगता है। अब रह गई नारायण, मन शांत होकर कहां बैठेगा, इंद्रियां शांत होकर बैठेंगी मन में, और मन शांत होकर बैठेगा बुद्धि में। अब बुद्धि हलचल शुरू कर देगी, तो बुद्धिश्च न विचेष्टति, अब बुद्धि की बस एक वृत्ति बनती हो तो बनाओ, नहीं तो वहां भी यही भाव करो कि सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। तो ये जो अहंकार की वृत्ति है ये भी शांत हो जाएगी। बुद्धि विज्ञान में कोष है, तो ये अहंकार की वृत्ति भी इसी के अंतर्गत है। तो अब अहंकार शांत होगा तो वो कहां बैठेगा, अहंकार का आधार अधिष्ठान क्या है, तो वो तो आत्मा ही है ना, तो आत्मा में ही बैठेगा। और अगर मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति आपने की, तो ये वृत्ति भी शांत होनी चाहिए, तब जाकर के परमांगतिम्ब होगी। ये वृत्ति शांत नहीं होती है तो ब्रह्माकारता में ले जाएगी, ब्रह्माकार वृत्ति का उदय होगा, और शांत हो गई तो समाधि में ले जाएगी। अब मैं ब्रह्म हूं ये वृत्ति कब तक पकड़े रहोगे, इसकी भी तो एक सीमा है। सीमा कब है, क्या है कि अविद्या का नाश, बस यही सीमा है। उसके बाद तो फिर मैं ब्रह्म हूं का अर्थ है सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही है। पहले मैं ब्रह्म हूं फिर सब ब्रह्म है। और सब पहले मान लो मैं ब्रह्म हूं ये न मानो तो ब्रह्माकार वृत्ति तो नहीं होगी, लेकिन हां समाधि हो जाएगी आपकी। यदा नलीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः, ये मांडुक कारिका का श्लोक है। यदा नलीयते चित्तम न च विक्षिप्यते पुनः अनिंगनम अनाभासम निष्पन्नम ब्रह्म तत्तदा। यदा न लीयते चित्तम, चित्त जो है लीन भी नहीं हुआ है, लीन माने बिल्कुल उसमें अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है,